मैं हूं शैली, एक आम आदमी, और हमारे शो मतलब की बात में आप सभी का स्वागत है। वेलकम, खुशामदीद। हमारी चर्चा जो मतदाता साक्षरता पर केंद्रित है जारी है। इसकी पिछली कड़ी में हमने मतदाता तुष्टिकरण और मतदाता के अधिकार में अंतर को स्पष्ट किया था और तुष्टिकरण के बारे में बताया था। तुष्टिकरण का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्न करना, और प्रसन्न तो किसी को भी कैसे भी किया जा सकता है। आपके पड़ोसी को आपके सामने कोई आदमी चार गालियां दे दे तो भी आप प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत समय से आपको उधार वापस नहीं कर रहा है। मगर मजा तो तब था जब वही व्यक्ति आपके पड़ोसी को गाली देने के बजाय उससे आपके पैसे वापस दिलवा देता, अर्थात आपका अधिकार आपको दिलवा देता। अब हम बात करेंगे कि हम अपने देश का नवनिर्माण कैसे कर सकते हैं। इसको आसान शब्दों में समझते हैं। माना हम एक स्टार्टअप या नया उद्योग या फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले जमीन की जरूरत होगी, बिल्डिंग, मशीनरी और कच्चे माल के लिए रुपए की, और आखिर में काम करने वाले स्टाफ की। जब ये सभी काम हो जाएंगे तो उत्पादन प्रारंभ होगा और समृद्धि भी आएगी, और साथ ही साथ हमारे परिवार और आसपास के अन्य सदस्य भी योग्यता अनुसार इस उपक्रम में रोजगार पा सकेंगे। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं कि क्या आप इस फैक्ट्री या इस उपक्रम के मैनेजमेंट या प्रबंधन की जिम्मेदारी किसी ऐसे आदमी को सौंपना पसंद करेंगे जिसे प्रबंधन की ABCD भी नहीं मालूम है, 8वीं क्लास फेल है और परिवार के सदस्यों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता? यकीनन आपका जवाब नहीं में होगा, क्योंकि आपको पता है ये इस काम के लिए उपयुक्त नहीं है। ये लालची व्यक्ति सिर्फ अपना भला करना चाहेगा, अपना उल्लू सीधा करेगा, और इस उपक्रम को खड़ा करने में आपके सारे प्रयासों को रसातल में डुबो देगा, और आप और आपका परिवार कर्जे तले दब जाएंगे। इसके विपरीत अगर आप योग्य व्यक्तियों जैसे अच्छे मैनेजर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे कारीगरों का चुनाव करेंगे तो निश्चित ही आप अपने उपक्रम को विकास के रास्ते पर दूर तक ले जाएंगे। संभव है 10 लोगों से शुरू की गई आपकी छोटी सी फैक्ट्री 5 या 10 साल में 2000 लोगों का एक बड़ा समूह बन जाए। इससे 2000 लोगों के परिवारों को लाभ मिलेगा और आप सब आर्थिक रूप से सक्षम और सशक्त हो जाएंगे। अब आपके सामने प्रकृति की असीम संभावनाएं होंगी और आप रोजाना नई ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। आपका सही चुनाव आपके आने वाली नस्लों और पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकता है, और एक गलत चुनाव आपको कर्जदार बना सकता है, दरिद्र वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर सकता है। अब आप इस उपक्रम वाली परिकल्पना को बड़े स्तर पर सोचें कि हमारा देश एक उपक्रम है, एक फैक्ट्री है जिसमें हम सब की भागीदारी है, मतलब हम सब इस फैक्ट्री के मालिक हैं। अब हमें इस फैक्ट्री को चलाने के लिए कुशल या कारीगर स्टाफ को चुनना है जो हमारे इस उपक्रम को अच्छे से चला सकें और हमें कमा कर दें, हमें प्रॉफिट दें। हमारा ये स्टाफ ईमानदार भी होना चाहिए, ऐसा ना हो किसी गलत व्यक्ति के हाथों हम सारी जिम्मेदारी सौंप दें और वो हमारे से धोखा करके हमारे से गलत कागजों पर दस्तखत करा लें और खुद फैक्ट्री का मालिक बन जाए, और आप और मैं फुटपाथ पर आ जाएं और रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सुविधाओं से भी वंचित हो जाएं। अब समझें, हमारा वोट हमारा दस्तखत है, हमारे हस्ताक्षर हैं, जिसके जरिए हम कुछ लोगों का चुनाव करते हैं और अधिकार देते हैं कि वो इस मुल्क के उपक्रम को चलाएं। अब हमने अपने मुल्क को चलाने वाले तो चुन लिए हैं, मगर उन पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना हमारी बड़ी भूल होगी। कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे, सीसीटीवी कैमरे भी लगाने होंगे, परचेज सेल पेमेंट प्रॉफिट एंड लॉस की भी बारीकी से ध्यान रखना होगा, उनको ऑडिट कर रखना होगा, और अगर कोई चोरी करता पकड़ा जाए तो उसको फायर भी करना होगा, मतलब उसको बाहर का रास्ता भी दिखाना होगा, और उसने जो हमारा नुकसान किया है उसकी भी हमें रिकवरी उससे करनी होगी। हमारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया जिसमें न्यूज़पेपर और विपक्ष भी इसमें शामिल है, ये सब हमारे आंख और कान हैं जो हमारे स्टाफ की हर हरकत पर, सरकार पर नज़र रखते हैं और हमें बताते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें गलत हो रही हैं। संसद में हमारे नुमाइंदे जो विपक्ष में हैं वो हमारी तरफ से सवाल जवाब करते हैं, और अगर संतुष्ट नहीं होते तो देश की जनता को, जो इस मुल्क की मालिक है, उसके सामने सारे तथ्य रखते हैं, और अगर सरकार यानी हमारा स्टाफ हमसे कुछ छुपाएगा तो न्यायालय उन्हें मजबूर करता है कि अपने बही खाते और सारी चीज़ें लेकर आए और फिर उस पर अपना फैसला सुनाता है। अब अगर कोई गलत स्टाफ हमने अपॉइंट कर लिया जो योग्य भी नहीं है और चालाक भी है तो हमें कैसे पता चलेगा? तो ये जानने के लिए एक बहुत साधारण सा तरीका है कि हमें अपनी ऑब्जर्वेशन खुली रखनी पड़ेगी और चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। नंबर एक, हमारा प्रबंधक जो हमारी फैक्ट्री को चला रहा है या सरकार को चला रहा है, वो सबसे पहले अपने मालिक की आंखों पर, या कह लीजिए कि हमारी जो हम जनता हैं आंखों में पट्टी बांधने का प्रयास करेगा, अर्थात मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी लगाएगा। यह है पहली निशानी। इसके बाद दूसरे नंबर पर वो हमारी अदालतों को और विपक्ष को डराएगा, धमकाएगा कि वो इसके गलत कामों पर चुप्पी साध लें, और तीसरी निशानी आम जनता का ध्यान ऐसे मुद्दों पर ले जाएगा कि हम उससे सवाल ही ना कर पाएं और हमें वक्त ही ना मिले कि हम उसे पूछें कि भाई क्या कुछ हो रहा है। कभी ये जात पात के झगड़े, कभी दंगे फसाद, कभी पड़ोसी मुल्क से खतरे का भय दिखाकर आपको आतंकित करता रहेगा और अपने मालिक यानी जनता का तुष्टीकरण करके अपना उल्लू सीधा करता रहेगा या सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। एक शेर याद आ रहा है, कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये शेर क्यों सुनाया। इस शेर को सुनाने का मकसद ये था कि हम आपको कुछ चीज़ें समझा सकें। तो पहले आप ये चीज़ पर ध्यान दें कि चीन जो हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, और चीन को किसी समय अफीम चीज़ों का देश कहा जाता था, मगर आज वो सुपर पावर है। उसे दुनिया के निर्माण की फैक्ट्री भी कहा जाता है, जो वहाँ की जनता के नौकरों अर्थात सरकार की कार्य कुशलता का एक जीता जागता प्रमाण है। मुहावरा भी है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जितनी प्रगति सारी दुनिया ने 300 सालों में की, उतनी प्रगति चीन ने पिछले 50 सालों में कर ली। हमारे उपक्रम प्रबंधक हमें कभी नहीं जानने देना चाहेंगे कि हमारे पड़ोसी की फैक्ट्री इतने कम समय में इतनी बड़ी कैसे हो गई, क्योंकि मालिक को पता चलेगा तो वो उल्टा उससे सवाल करेगा कि बता कमी कहाँ रह गई, और मैनेजर साहब से जवाब दिए नहीं बन पड़ेगा। मैं अपनी बात इस संदेश के साथ समाप्त करता हूँ कि आप इस ऑडियो को बार बार सुनेंगे और आत्ममंथन करेंगे कि आपकी आवश्यकताएं क्या थीं और क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं आपकी जरूरतें पूरी हुई या नहीं हुई, आपको आपके अधिकार मिले या नहीं, या आपका सिर्फ तुष्टिकरण हुआ है। आज तक जिस व्यक्ति को पहले वोट दिया था, क्या वो योग्य था या नहीं, कहीं हमारे से ये गलती तो नहीं हो गई थी कि हमने योग्य व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया था और गलत व्यक्ति को वोट दे दिया था या आपकी फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया था। खैर जाने दें, मगर भविष्य में सिर्फ मतदाता बनकर या वोटर बनकर ही बटन मत दबाइएगा। एक मालिक की तरह हर उम्मीदवार का बायोडाटा चेक करना और उसका इंटरव्यू लेना, और अगर कोई उम्मीदवार योग्य है तो उसे बिना किसी के प्रभाव में आए उसकी जाति, धर्म और लिंग भेद को साइड में रखकर आपने वोट करना है, अर्थात आपने उसके अपॉइंटमेंट लेटर पर दस्तखत करने हैं। फिर मुलाकात होगी जल्द की, तब तक सोचें, विचार करें और प्रतिदिन करें। अब मुझे दे इजाज़त, अलविदा, जय हिंद।